ओम शांति। चर्चा करनी है या क्लास कराना है? चर्चा और क्लास एक विदेश की कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और अचानक एक दिन उसका जो बिजनेस था एकदम से ठप हो गया, देवाला निकल गया और वो कंगाल हो गया। बहुत उदास हो गया, सोच रहा था कि जीवन का अंत कर दूं और इसी उदासी के साथ समुद्र तट पर गया और वहां पर बैठा रहा। तो एक बूढ़ा सा आदमी उसके पास आया और उस बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों इतने उदास हो? तो उस व्यक्ति ने अपनी कर्म कहानी सुनाई। उस बूढ़े आदमी ने अपने जेब से एक चेक निकाला और कहा कि ये चेक तुम ले दो और फिर से अपना बिजनेस चालू करो। और वो बूढ़ा आदमी चला गया। जब उस व्यक्ति ने उस चेक को देखा तो उसमें एक बहुत बड़ी रकम 100,000 या फिर शायद 50,000 ऐसा एक डॉलर्स का चेक था उसमें, और नीचे नाम लिखा था जॉन डी रॉकफेलर। जो था वो अमेरिका का सबसे सबसे रईस व्यक्ति, ऑयल इंडस्ट्री का। तो वो बिजनेसमैन सोचता है कि इतने बड़े व्यक्ति मेरे पास आया और उसने ये चेक देकर गया है, मैं उसे पहचान नहीं पाया। परंतु उस बूढ़े व्यक्ति ने जाते हुए कहा था कि एक साल बाद मैं तुम्हें फिर यहां मिलूंगा। तो ये जो बिजनेसमैन उद्योगपति व्यक्ति होता है, जो कि अब कंगाल बन चुका था, सोचता है, अब उसके मन में जैसे एक नया संकल्प आता है। उसके पास एक बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ा एक चेक, परंतु वो सोचता है कि बिना इस चेक को यूज किए ही मैं अब फिर से सब कुछ अपना तैयार करूंगा। जो कुछ उसका नुकसान हुआ है, जो भी उसके साथ हुआ है दुर्भाग्य से, वो संकल्प लेता है कि मैं अपना भाग्य फिर से निर्माण करूंगा, और वो लग जाता है इस कार्य में। वो चेक वैसे ही अनकैश्ड रह जाता है, परंतु उसे एक विश्वास रहता है कि अगर कुछ ज्यादा तकलीफ हुई तो ये कैश बैंक में डालकर पैसे निकाल लूंगा। तो परंतु वो कार्य करते रहता है, फिर से उसमें जैसे एक नया उमंग, नया उत्साह भर जाता है और दिन रात काम में लग जाता है। फिर से थोड़े पैसे कमाते हैं और फिर देखते ही देखते एक साल भर में अपना पूरा जैसे पहले साम्राज्य था बिजनेस का, वैसे फिर से खड़ा कर देता है। परंतु वो क्या चेक जो था वो अब भी वैसा ही है, अनकैश्ड। सोचता है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने एक साल के बाद उसी जगह पर उसी समय बुलाया था, तो मैं वहां जाता हूं। और वो जो व्यक्ति था जॉन डी रॉकफेलर, उस समय का जॉन डी रॉकफेलर की मृत्यु 1937 में शायद हो गई, तो कहानी उसके पहले की है। तो वो वहां पहुंचता है और इंतजार करता है वो चेक को लेकर, और बराबर उसी समय पर वो व्यक्ति वहां जाता है, वो बूढ़ा व्यक्ति रॉकफेलर। परंतु उसके पीछे भागते हुए एक नर्स आती है और उसको पकड़ के ले जाती है हॉस्पिटल। तो उसे आश्चर्य होता है, ऐसा क्यों? वो कहता है, सिस्टर इनको आने दो, इनको क्यों पकड़ा है आपने? वो कहती है, नहीं, ये मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ मरीज है, और ये जहां भी जाता है सबको एक ही बात कहता है कि मैं जॉन रॉकफेलर हूं, जबकि वो जॉन रॉकफेलर है ही नहीं। उसके पास एक चेकबुक है जिसपे उसने नाम छपवा रखा है, परंतु इसके पास ना तो अकाउंट है ना तो कोई पैसे है। तो उद्योगपति सोच में पड़ जाता है कि इसके बलबूते पर, इस चेक के या फिर उस व्यक्ति के बलबूते पर, उस संकल्प से मैंने इतना कुछ कर दिया और कितना निश्चिंत होके किया सब कुछ, परंतु बाद में पता चला वो चेक भी झूठा था तो वो व्यक्ति भी झूठा था। तो ये कैसे हो गया? क्या उत्तर है इसका? संकल्प शक्ति से हो गया। और कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? उमंग उत्साह आ गया उसमें। और कैसे हो गया ये कार्य? उस पैसे का हौसला हो गया। और कैसे हो गया ये कार्य? कल की मुरली के वरदान से, साकार मुरली, वो परसों का वरदान है। बड़ा बाप, बड़ा बाबा बैठा है, ये निश्चय, ये विश्वास से व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। दुनिया के लोग फिक्र के बादशाह है, तुम बेफिक्र बादशाह हो। अगर तुम ऐसी स्थिति में रहते हो तो एक बहुत ही सुंदर बात कल की मुरली के वरदान की लास्ट लाइन, समय पर टचिंग होगी। क्या करना है? श्रेष्ठ संकल्प समय पर टचिंग होगी और फिर सहज सफलता होगी। समय पर टचिंग हो जाना, समय पर पता चल जाना क्या करना है। ऐसी निश्चिंत स्थिति कि वो बैठा हुआ है। उस कहानी में तो चेक भी झूठा था, वो बाबा भी झूठा था, बूढ़ा बाबा। यहां बाबा ने कहा निश्चिंत। एक तो ये संकल्प, ये निश्चय, दूसरा संकल्प शक्ति, सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन आज की मुरली से संकल्प शक्ति है। जो चीज जितनी सूक्ष्म है वो उतनी ही अधिक शक्तिशाली होने लगती है। संकल्प इस संसार में सबसे सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म संस्कार है। तो संकल्प शक्ति से, तो आज की मुरली 18 जनवरी की मुरली है, 82 की, 83 में यहां पर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके लिए बाबा ने क्या कहा, यहां से शुरुआत करते हैं। 83 में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, पहली कॉन्फ्रेंस ओम शांति भवन। क्या करो उनको? वो जो वीआईपी है, वीआईपी से क्या बनाना है उनको? स्नेही, और स्नेही से संबंधी, वीआईपी से स्नेही और स्नेही से संबंधी। और विधि क्या है ये बनाने की? जिगर से बाप की महिमा करो, तो वो क्या हो जाएंगे? महिमा और मोहित हो जाएंगे। महिमा इतनी करो और जिगर से करो तो वो आत्माएं मोहित हो जाएंगे। दो उदाहरण दिए यहां पर बाबा ने, कौन से? जैसे मुरली में कितने सारे उदाहरण होते हैं, सारी अव्यक्त वाणियां उदाहरणों से भरी हुई है। और जैसे इसके पहले भी कहा था, अभी बाबा उदाहरण कम देते हैं, जो बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है जीसस क्राइस्ट का, 12 घंटा पहले अपने शिष्यों के साथ बैठा हुआ है, जबकि एक शिष्य ने उसे धोखा दे दिया है और वो शिष्य अभी आ रहा है उधर से। उन शत्रुओं के साथ कहो या उन सैनिकों के साथ क्राइस्ट को पकड़ने के लिए, पकड़वाने के लिए, उस समय जो प्रवचन है सरमन ऑन द माउंट, जिसमें जीसस कहता है कि मैंने अब तक तुम्हें उदाहरणों से समझाया है, आई हैव टॉट यू टिल नाउ विद पैराबल्स, अब तक मैंने उदाहरण दिए, दृष्टांत दिए, एग्जाम्पल से पढ़ाया, जब मैं तुम्हें डायरेक्ट समझाने लगूंगा तब समझ लेना मेरे जाने का समय आ गया है, तब समझ लेना मेरे जाने का समय आ गया है। जैसे ही वो वाक्य कहता है, दो शिष्यों का वार्तालाप का वर्णन है बाइबल में। एक शिष्य कहता है, अरे देखो, नाउ ही इज टॉकिंग प्लेनली, अब वो बिना किसी उदाहरणों के समझा रहा है, क्या यही समय है कि अब उसके जाने का समय आ गया है? अब तक मैंने तुम्हें उदाहरणों से समझाया, जब मैं तुम्हें डायरेक्ट सिखाने लगूंगा, डायरेक्ट समझाने लगूंगा, नो दैट टाइम हैज कम, द टाइम इज हियर। तो बाबा ने अब तक उदाहरणों से समझाया है, बहुत सारे उदाहरण, एक एक अव्यक्त वाणी में इस संसार के उदाहरण, भक्ति के उदाहरण, सतयुग के उदाहरण, लौकिक के उदाहरण, अलौकिक के उदाहरण, कविताएं, बाबा की जो भाषा है काव्यात्मक भाषा है, अलंकारिक भाषा है, कौन सी माला, कौन से मोती, कहाँ है ये सब, कौन सा वृक्ष मोती पर लिखत, एक वृक्ष अनेक फल, कौन सा वृक्ष कौन सा फल, कौन सा बीज, कुछ है क्या ऐसा? कुछ भी तो नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है सब कुछ, एब्स्ट्रैक्ट, सब निराकार है। उसको रूप दे रहा है बाबा, क्योंकि जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है अध्यात्म के इतने ऊंचे है, उनको समझाने के लिए वो निराकार है, उनको कैसे समझाए? उनको समझाने के लिए इस संसार के उदाहरण, ये ऐसा है, ये वैसा है, टू गिव टू एयर इन नथिंग अ फिजिकल हैबिटेशन एंड नेम। शेक्सपियर अपनी एक कविता में लिखता है कि कवि क्या करता है, अपनी इमेजिनेशन से एयर इन नथिंग जो है, जो हवा है जिसका कोई रूप ही नहीं है, उसको एक घर देता है, एक नाम देता है, एक रूप देता है। तो इस संसार का सबसे बड़ा कवि, कवियों का कवि, साहित्य सम्राट एक परमात्मा है। तो अब वो जो बोल रहा है डायरेक्ट बोल रहा है, अब वो जो बोल रहा है उदाहरण दिए बिना बोल रहा है, शायद अब वो समय है उसके जाने का। तो महिमा कैसे करो बाप की? जिगर से करो। कैसे की जाती है जिगर से महिमा? संजय भाई, जिगर से कैसे बाप की महिमा की जाती है? कंटिन्यूअस करते रहो उसका नाम लेते रहो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ऐसी उसकी महिमा। उसके नाम का भी कितना गायन है भक्ति में। कलयुग में तो शास्त्रों से, वेद से, संन्यास से मुक्ति नहीं होगी। वो भक्त कहते हैं कि बस हरेर नाम केवलम, उसके नाम से ही मुक्ति होगी, इतना उसके नाम का गायन है। तो उसकी जिगर से महिमा करो तो आत्माएं क्या हो जाएगी, मोहित हो जाएगी। और बाबा ने दो उदाहरण दिए, कौन कौन से? एक तो भक्ति का उदाहरण और दूसरा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का उदाहरण। उनको अपने से भी ऊंचा समझते और सिर झुक जाता है। भक्त जाते हैं मंदिरों में और झुक जाता है सिर। तो वो जड़ यहाँ चैतन्य, तो तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। कौन झुक जाएंगे? तुम सब कौन हो? तुम्हारे पास संपूर्ण ज्ञान है, तुम होशियार हो गए हो, बाबा ने कहा। देश का, विदेश का, साइंस का, साइलेंस का, वो साइलेंस वाले, वो साइंस वाले, शस्त्र और शास्त्र दोनों ही झुकेंगे। भल चांद पर गए हैं परंतु अपने आप की अनुभूति नहीं है, अनुभव नहीं है। अनुभव सबसे बड़ी शक्ति है और वो शक्ति तुम्हारे पास है। इसके लिए बोलने वाले तो बहुत है संसार में परंतु उनके पास अनुभव नहीं है। प्रभु प्रेम का अनुभव, परमात्मा प्रेम का अनुभव, परमात्मा मदद का अनुभव, परमात्मा साथ का अनुभव, परमात्मा विरह का अनुभव, वह अनुभव आत्माओं के पास नहीं है। उनके पास सांसारिक ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन है। चांद पर पहुंच गए, जब नील आर्मस्ट्रांग और उसके दो साथी चांद पर पहली बार पहुंचे थे और सारे जगत में वो दिखाया गया था। एक दूसरी स्टडी हुई थी साथ साथ ही, जो कि मनोवैज्ञानिकों ने की थी। वो स्टडी ऐसी थी कि जिसमें ये पाया गया, साइकोलॉजिस्ट ने अपनी स्टडी में एक निष्कर्ष निकाला कि चांद पर पहुंचने के एक घंटे बाद ही चांद के प्रति जो सदियों से मनुष्य के मन में एक उत्सुकता थी, चांद के प्रति जो उत्सुकता थी कि चांद क्या है, चंद्रमा में क्या होता है, और जैसे पता चला वहां केवल मिट्टी है, चांद पर न मालूम कितनी कविताएं लिखी गई थी, सौंदर्य का की तुलना चंद्रमा से की गई थी, चांद सा चेहरा। परंतु जब पता चला कि वहां पर तो वही मिट्टी है, वो जो इंटरेस्ट, वो जो तीव्रता, वो जो उत्सुकता थी, जो उत्कंठा थी जानने की, वो समाप्त हो गई। तो चांद पर तो पहुंच गए पर अपने आप को नहीं जाना, अपने आप का कोई अनुभव नहीं है। अनुभव तुम्हारे पास है। तो क्या करो? बाप की महिमा गाओ, तो वो तुम्हारे आगे, तुम्हारे सामने स्वतः ही झुक जाएंगे। तो इस आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य जो हो वो अनुभव हो। केवल ज्ञान सुनना सुनाना या ज्ञान की चर्चा करना, यहाँ पर चिंतन भी करना, केवल चिंतन लक्ष्य नहीं है। चिंतन एक सोपान है परंतु लक्ष्य अनुभव है, एक्सपीरियंस, डीप एक्सपीरियंस। अनुभव भी छोटा मोटा अनुभव नहीं, बहुत गहरा अनुभव, ऐसा अनुभव कि उसके प्यार का अनुभव, वो साथ है। इसके लिए क्या किया जाए, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। अगर मुरली आप पढ़ रहे हैं, मुरलियों का अध्ययन हम करते हैं, परंतु अनुभव हमारा नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की कमी है। तो ये बाबा ने शायद सेल्फ टॉक की कमी है, सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, स्वयं से रूहरियान। जब तक स्वयं स्वयं से हम रूहरियान नहीं करते, स्वयं स्वयं से बातें नहीं करते, स्वयं स्वयं को नहीं देखते, स्वयं स्वयं का अवलोकन नहीं करते, स्वयं स्वयं की गलतियों को स्टडी नहीं करते, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। धक्का लगना चाहिए, चोट लगनी चाहिए। व्यक्ति बदलता तब है जब उसे चोट लगती है, जब वो ये मानते रहे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो वैसी ही दिनचर्या भी वैसी ही चालू रहती है। जब पता चलता है दिनचर्या में ये जो बात है इसमें गलती है, दिनचर्या में ये जो संबंध बनाया है किसी व्यक्ति से, वो संबंध प्रेम नहीं मोह है, और मोह विकार की कैटेगरी में आता है, प्रेम दिव्य गुणों की कैटेगरी में है। अपने मोह को हम प्रेम समझकर यदि चल रहे हैं, अपने मोह को यदि प्रेम की संज्ञा दे रहे हैं, तो व्याकरण बदलने की आवश्यकता है। नाउन ही गलत है। तो बाप की ऐसी जिगर से महिमा गाओ कि आत्माएं मोहित हो जाए, तुम्हारे सिर पर गिर जाए, उनको ये अनुभव कि फाउंडेशन हमारा नहीं है, फाउंडेशन इनका है, फाउंडेशन हमारा नहीं है, इनका है, हम ऊपर ऊपर से हैं, सारा साइंस जो अपने घमंड के शिखर पर है, जो सोचता है हम कुछ भी कर सकते हैं, ये साइंस का घमंड टूटेगा, साइलेंस की विजय होगी। फ्रेडरिच नीत्शे एक बहुत बड़ा विचारक हुआ, उसने एक ऐसा वाक्य लिखा था बहुत पहले जो सारे विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था, गॉड इज डेड। उसने लिखा था जब विज्ञान का शैशवकाल था, वो बचपन था, और जब साइंस के सिद्धांत बाहर निकल रहे थे और अध्यात्म के सिद्धांत को हरा रहे थे, उसने कहा था ये जो संकल्पना है परमात्मा की यही गलत है, गॉड इज डेड, परमात्मा मर चुका है। उसने ये क्रिश्चियन धर्म के लिए लिखा था। उसने इस भाव से लिखा था कि अब तक जो तुम मानते थे परमात्मा को, ये तुम्हारी भावना, ये तुम्हारी धारणा ही गलत है, क्योंकि साइंस के जितने सिद्धांत थे बाइबल में जो कुछ लिखा था उसके विरोध में जा रहे थे, तो साइंस को झुकना पड़ेगा। एक है शास्त्रवादी, दूसरे बाबा ने किसको याद किया, शास्त्रवादी। दो सत्ताएं, बड़ी सत्ताएं है ये, धर्म सत्ता और विज्ञान सत्ता, तीसरी भी सत्ता है राज्य सत्ता, वो राज्य सत्ता भी झुकेगी, तीनों ही सत्ताएं इस परमात्मा सत्ता के सामने झुकेगी एक दिन। शास्त्र पढ़ने वाले ये जानेंगे कि हमने जो पढ़ा है सब व्यर्थ है, भटकाने वाला ही था, ना तो मन शांत हुआ, स्थिर हुआ, न गति हुई न सदगति। ऐसी फ्रस्ट्रेशन की स्थिति एक दिन आएगी सबकी, वो परमात्मा प्रत्यक्षता का समय होगा। फिर बाबा ने स्टीव, अच्छा वहां चालू करना है, स्टीव नरेन, उनको याद किया। क्या कहा उनके लिए, वहां पर मुरली में नारायण छप के आया है, नारायण नहीं है उनका नाम, नरेन। तो हाँ, तो उनको बाबा ने याद किया। क्या कहा उनके लिए, एक तो नारायण को भी याद किया कि नरेन को भी याद किया, दोनों को याद किया है, दोनों का पार्ट अलग अलग। वो अंकल अभी अभी शरीर छोड़ा है उन्होंने 2013 में जुलाई सुबह सुबह 8 बजे। जयंती बहन सुबह ही गए थे 29th को, शायद 30 तारीख, एक दिन पहले ही वहां पहुंचे और फिर उनके सामने ही सब बैठे थे तब उन्होंने शरीर छोड़ा। क्या कहा बाबा ने उनके लिए, तन मन धन से सहयोगी हुए, सहयोगी बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग किया है बाबा ने, सहयोगी, स्नेही, ज्ञान के आधार पर स्नेही, नम्रचित, हिम्मत, अच्छे सेवाधारी और नंबर वन सेवाधारी, एक के ज्ञान का अनेकों पर प्रभाव, ज्ञान एक के प्रास उसका प्रभाव अनेकों के पर, इसका उदाहरण है ये। और अमेरिका की जो सेवाएं हुई, इनके द्वारा हुई, गयाना से साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कैरिबियन कंट्रीज, वहां की जो भी सेवाएं हुई इनके द्वारा। हाँ, बजट के लिए कहा, पांडव गवर्नमेंट की बजट से बुद्धि से यहां पर है। तो बाबा ने जो स्नेही आत्माएं हैं, सहयोगी आत्माएं हैं, और एक दूसरी आत्मा को भी याद किया है सहयोगी, कौन, शैली, उनको भी याद किया। एक बात जो मुरली में नहीं छपी है, जो आगे उन्हीं के बारे में बाबा कह रहे हैं, सहयोगी आत्माएं हैं, वो सहयोगी ही रहे, उनसे सहयोगी रहने से जो सेवा होती है वो अच्छा है, पूरा अर्पण न होना ये भी अच्छा है, नहीं तो वो सेवा नहीं कर पाएंगे सहयोगी जो योगी बनने की बात करेंगे। अच्छा है कि वो सहयोगी ही रहे, संबंध संपर्क में ही रहे, ये बात उसमें कही है जो छपा नहीं है पर ओरिजिनल मुरली में है। ये 14 तारीख की मुरली है, एक 18 तारीख की, दो मुरली है आज की मुरली में, एक आबू के कॉन्फ्रेंस का 18 का है, 14 का है, ये यूएन का 18 का है, और जो अंकल का है वो भी 14 तारीख का है। तीनों बातें 14 तारीख की है, बाकी मुरली 18 तारीख की है, दो मुरलियां है। तो उस बहन को भी बाबा ने याद किया, उसमें मुख्य रूप से 3 ऐसे शब्द आए हैं, एक परिवार की फीलिंग, दूसरा प्रेम की पालना, और तीसरा संबंध का रस। आत्माओं को ये 3 चीजें चाहिए और मिलती भी है। ज्ञान नहीं सुनना चाहते ज्यादा, कहा ना बाबा ने, वहां उनको ऑफिशियल रहना पड़ता है, तो उन्हें किस चीज की आवश्यकता है, प्रेम की पालना, प्रेम चाहिए आत्माओं को, संबंधों का रस, परिवार की फीलिंग। लास्ट संडे की मुरली, आत्माएं क्या अनुभव करे, ये हमारे क्लोज रिलेटिव है, अपने हैं, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आए, पहले रिलेशनशिप और उसके बाद फिर बाप से कनेक्शन। तो 3 चीजें देनी है आत्माओं को, यहां जो भी आता है पांडव भवन में या सेंटर पर या हमारे गृहस्थ व्यवहार, हम जहां रहते हैं उस घर में, उनको क्या लगे, संबंधों का रस, परिवार की फीलिंग और प्रेम की पालना। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी नया आए उसको पकड़ के ज्ञान ही सुनाया जाए और अपने आप को तृप्त करे और बाबा के कमरे में जाकर कहे कि हमने क्या आवश्यकता ही है, हाँ, आपका नाम बाला करके आए हैं, क्या आवश्यकता है कि हर एक को ज्ञान से ही पालना की जाए, ज्ञान ही सुनाया जाए, वही बातें जो सब जगह सुन के आए, फिर पांडव भवन पहुंचे और फिर से वही सब बातें। ज्ञान से पालना तो उनकी की जाती है जो पहले से ही जिनमें प्रेम भरा हुआ है परमात्मा, पहले प्रभु प्रेम भरना है आत्माओं में, उनको लगे कि ये हमारे अपने हैं तो वो तो सुनेंगे, नहीं तो ज्ञान सुनाने वाले दुनिया में हजारों है, हजारों आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, हजारों जगह पर स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स और आध्यात्मिक गुरु अध्यात्म से संबंधित विषयों पर बोलते हैं, केवल यही नहीं सब जगह बोलते हैं, शायद ही ऐसी तो आज तो कितनी सारी संस्थाएं हैं। तो प्रेम की पालना, लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने उदाहरण दिया था, वो जो लोग हैं वो फॉलोअर्स बनाते हैं, वो जो फॉलोअर्स होते हैं वो बच्चे नहीं बन पाते, वारिस नहीं बन पाते, बाप के वर्षे के अधिकारी नहीं बन पाते, क्यों? क्योंकि सस्टेनेंस उन्हें नहीं मिलता है, प्रेम की पालना उन्हें नहीं मिलती। तो यहाँ बाबा ने जो कहा तीन चीजें बार बार इसे याद करना है कि जो भी आत्मा आए नहीं, क्या करना है उसे? प्रेम की पालना देनी है, संबंधों का रस देना है और परिवार की फीलिंग देनी है। हम रहम दिल तो है परंतु बहुत ही बेरहमी से क्या करते हैं? ज्ञान सुनाते हैं, जब तक पूरा सुना न दे। कोई कोई 7 दिन का कोर्स पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आत्मा भी बता दो, परमात्मा भी बता दो, तीन लोग भी बता दो, ये भी बता दो, ये ब्रह्मा है उसमें भगवान, ये सब सब सुना दो एक साथ, सारा पवित्रता के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में, खान पान के बारे में सब कुछ बता दो जी। बताओ, परंतु किसको बताना है? नब्ज देखकर, कहीं वो कुछ और, क्योंकि आजकल आत्माएं जो आती है सब कुछ पढ़ के आती है, यहाँ पर इंटरनेट पे सब कुछ दिया हुआ है ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, यहाँ तक ब्रह्मा कुमारीज कॉन्ट्रोवर्सीज सब कुछ, जो कुछ निगेटिव है वो भी पढ़ के आती है, इतनी होशियार है सब आत्माएं। माउंट अबू जा रहे हैं घूमने, मतलब क्या क्या वहां है पहले ढूंढेंगे, ब्रह्मा कुमारीज क्या है उसके बारे में सब कुछ ढूंढेंगे, ब्रह्मा कौन था उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, फिर क्या क्या उसके विरोध में लिखा गया कहा गया वो सब भी पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे ताकि प्रभावित ना कर सके, यहाँ पे कोई हिप्नोटाइज ना हो जाए यहाँ के लोगों से। तो प्रेम की पालना, लक्ष्य रखना है ज्ञान नहीं प्रेम, प्रेम देना है, संबंधों का रस देना है आत्माओं को, ये तीन चीजें यहां पर कही बाबा ने। उसके बाद बाबा का लौकिक परिवार, क्या कहा उनसे, क्या कहा विट्ठल भाई, क्या कहा बाबा ने नारायण दादा को, बोलो एक तो पॉइंट बताओ, क्या कहा राहुल भाई? जंप लगाने की बात कही, एक जगह उड़ती कला की बात की, एक जगह पंख की बात की, तो जंप लगाना है। उदाहरण किसका दिया, फिर से उदाहरण मुरली में ये देखना कि बाबा कैसी अपनी हर बात को उदाहरण से समझाता है, भारत वालों को विदेश वालों का उदाहरण, विदेश वालों को भारत वालों का उदाहरण। तो जैसे वो, उन्होंने क्या किया, संकल्प किया जाना है आना है, और उस संकल्प से आ गए, अधिकार ले लिया, दृढ़ संकल्प से अधिकार ले लिया, और तुम तो बचपन से अधिकारी हो, पंख दिए उन्हीं स्नेह के पंखों से, उसी स्नेह के पंख पर बैठकर क्या करो, बाप समान फरिश्ता बनो, उड़ो। पर उसके लिए क्या जरूरी है, उड़ने के लिए डबल लाइट स्थिति, डबल लाइट रहना जरूरी है। तो एक फिर वो दोनों के लिए कहा पहियों के बारे में, दृढ़ संकल्प से विदेशियों की बात बाबा कह रहे, एक संकल्प किया मधुबन आना है, बाबा से मिलने जाना है, और पहुंच गए। और भारत वाले कभी कभी सालों गुजर जाते हैं मधुबन में आए, ऐसे भी कई सारे हैं। सेंटर पे जाओ अगर स्टेटिस्टिक निकालो तो पता चलेगा कि कितने भाई बहने हैं दो तीन साल से गए नहीं है मधुबन, टीवी पे देख लेते हैं। कारण हर एक के अपने अपने हैं, बहुत सारे कारण हैं। ये संकल्प करना कि मधुबन जाना है, कितनी दृढ़ता चाहिए। हाँ, यहाँ पर बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। सेकंड का सौदा, सेकंड की कल्पना, सेकंड का खेल हो सकता है, परंतु दृढ़ संकल्प चाहिए। हो सकता है परंतु डबल लाइट स्थिति चाहिए, और मुख्य तो है संकल्प। अगर व्यक्ति संकल्प कर ले तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ऐसा असंभव कार्य इस जगत में कोई भी नहीं है। विदेश में एक ब्रुकलिन ब्रिज है, यूएस में न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड के पास ब्रुकलिन ब्रिज, उसकी कहानी इतनी अद्भुत है उस ब्रुकलिन ब्रिज की कि 13 साल लगे उसे बनाने में। जॉन रॉबलिंग करके एक इंजीनियर था, उसके मन में पहला ये संकल्प आया था कि वो इतना बड़ा ब्रिज बनाया जाए, जो कि सबने कहा असंभव है, आज तक किसी ने न बनाया न सोचा, पर उसने संकल्प किया था। वो कितना किलोमीटर का ब्रिज है हमें पता नहीं, पर बहुत बड़ा ब्रिज है। उसने संकल्प किया था कि मुझे ये ब्रिज बनाना है, कैसे भी करके बनाना ही है, और उसने काम चालू किया था, परंतु दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उसका जो बेटा था वॉशिंगटन रॉबलिंग, उसने सोचा मैं अपने पिताजी के इस काम को पूरा करूंगा। कितने लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई कि नहीं हो सकता, ये ब्रिज इतना बड़ा, न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड कितनी दूर जगह है, बीच में समुन्दर, कैसे बनेगा ये ब्रिज, असंभव सा है ये कार्य। परंतु उसका बेटा संकल्प करता है कि मुझे करना ही है, और कार्य आरंभ करता है। 1870 फिर से दुर्घटना होती है बेटे की भी, और इस तरह वो आहत होता है कि पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन इंजरी होती है, बोलना भी बंद और पैर भी अपाहिज हो जाता है। फिर भी मन में फिर से लोग बहुत हंसी उड़ाते हैं, पहले ही कहा था, क्योंकि वो काम भी बहुत खतरनाक था, परंतु वो संकल्प उसका इतना दृढ़ होता है। दिखाया एक दिन बैठा है अपने खटिया में लेटा हुआ है, उसकी पत्नी आती है तो उसकी पत्नी के हाथों पर वो सोचता है, बोल तो सकता नहीं, क्या करूं अभी, पर करना तो है इस कार्य को। इंस्ट्रक्शंस लिखता है उसको, ऐसे ऐसे कर सकते है क्या, और फिर पूरा ही ब्रिज उसने वैसे ही बनाया, उसके पत्नी को इंस्ट्रक्शन दे देकर, लिख कर बताया ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, और 13 साल के बाद वो ब्रुकलिन ब्रिज बन गया। एक संकल्प केवल करना है, इसके लिए विदेशियों की बाबा महिमा कर रहे हैं। संकल्प करते मधुबन में जाना है, उस एक बार जाने के लिए जरूरी नहीं है कि सब बहुत ही पैसे वाले हैं, साल भर मेहनत करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर आते हैं। हमको ये बात इसलिए पता है कि कई बार हमारे हॉस्पिटल में विदेशी भाई बहने आते हैं और उनको कोई बीमारी होती है, एडमिट करना होता है, पैसे नहीं होते हैं। आश्चर्य लगता है कभी कभी, इनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि कितनी मेहनत से पैसे कमाए हुए होते, बहुत ही लिमिटेड पैसे होते हैं उनके पास। अगर कोई एक्स्ट्रा कोई जांच अगर बोलो तो कहते हैं हम उधर जाके कर लेंगे, क्योंकि अभी पैसे नहीं है। तो दृढ़ संकल्प, और एक कायदा यहां पर बाबा ने बताया, कौन सा? राजू भाई, नारायण दादा से मुलाकात, बाबा ने कायदा बताया यहां पर, कौन सा कायदा? ऊंचा बाप बच्चों को भी ऊंचा रखते हैं, ऊंचा देखना चाहते हैं, ये कायदा है। जैसे मैं हूं तुम भी वैसे ही बनो। वो ऊंचा है तो वो भी हमें ऊंचा देखना चाहता है। तो ऊंचा बाप बच्चों को भी ऊंचा रखना चाहता है, ऊंचा देखना चाहता है, ये कायदा है। तो ये बात यहां पूरी हुई। उसके बाद मुरली शुरुआत करते हैं। तो क्या कहा आज की मुरली में शुरुआत में बाबा ने, कौन किसको देख रहा है या हम सब कौन है? हम जहान के नूर है। जहान के नूर तो वो है, हम उसके, वो जहान का नूर और उस नूर के हम नूर, ऐसे हुआ ना। वो जहान का नूर और तुम बाप के नूर, तुम नूरे रतन, तुम विश्व की ज्योति। यदि तुम बुझ जाओ राहुल भाई तो संसार में क्या हो जाएगा? अंधकार छा जाएगा, वीरानी सी छा जाएगी, उदासी सी छा जाएगी। हम हैं तो जगत में प्रकाश, हम हैं, हमारी चेतना अगर जगी हुई है, आत्माभिमानी स्थिति का नाम जगता हुआ दीपक। दिवाली की मुरली में भी बाबा ने कहा था, तुम चैतन्य दीपक हो, तुम यदि जगे हुए हो तो संसार में प्रकाश है, तुम बुझ जाओ। ये बुझना क्या है और जगना क्या है? स्मृति, इस ज्ञान की स्मृति, बाप की स्मृति। ये अगर स्मृति स्वरूप हम है, ये अवेयरनेस यदि इमर्ज है, अर्थात जगना, जैसे ही ये मर्ज हो जाती है, ढक जाती है, आवरण आ जाता है, विस्मृत हो जाती है, ये अंधकार है। मन में व्यर्थ आ जाना, साधारणता आ जाना, विकार तो बहुत बड़ी बात है, वो आ जाना, उसको तो हम छोड़ चुके हैं। तो यह अवस्था मन की जिसमें चेतना जगी हुई है, पवित्रता का दीपक जगा हुआ है, वो अवेयरनेस निरंतर है। आज ब्राह्मण समाज में कहीं ना कहीं पवित्रता की ये ज्योति जो है थोड़ी सी टिमटिमाती है। उनके मन में जो पक्के बच्चे बन चुके हैं, उनके मन में यदि विकार उत्पन्न हो, यहां तो नहीं बाहर, हजारों लाखों ब्राह्मण हैं, क्योंकि संसार में रहते हैं, टेक्नोलॉजी के बहुत समीप है, संपर्क में, तो कहीं ना कहीं मन के कोने में कहीं ना कहीं से विकारों की प्रवेशता होती है। यह विकारों की प्रवेशता होना ही दिए का पूछना है। मेरा दिया कैसा है इसकी चेकिंग करनी है। हम जहान के नूर है, बाबा ने कई मुरलियों में ऐसा भी कहा, आज तो कहा कि मैं बाबा जहान के नूर है, पर बाबा ने कहा तुम जहान के नूर हो, तुम विश्व की ज्योति हो, तुम जगे तो संसार जगा। अपनी लाइट को चेक करना है, पहली बात तो ये। दूसरी पॉइंट आगे मुरली में क्या कहा, प्यार भरी बातें है कुछ। संदीप भाई छोड़कर, आपने अभी अभी मुरली रिवाइज की है 3 दिन पहले। बाबा अमृत वेले क्या क्या करते हैं, अच्छा टॉपिक है ये। क्या करते हैं बाबा? उस दिन परमधाम की बताए थे कुछ बातें ना, सूक्ष्म वतन की किसी और क्लास में बताई थी, परंतु ये अच्छा पॉइंट है। बाबा अमृत वेले क्या क्या करता है? हम तो अमृत वेला करते हैं योग, और वो क्या करता है? पहले तो खटिया खिलाता है, और क्या करता है? चक्कर लगाता है, और क्या करता है? गीत गाता है। गीत गाता है कि गीत सुनता है? गाता भी है सुनता भी है, और क्या करता है? वरदान देता है, शक्ति भरता है, तिलक लगा देता है सुबह सुबह, कमजोरियों को समाप्त करता है। आज की मुरली में क्या कर रहा है? अमृत वेले से एक तो गीत सुन रहा है। किसका गीत सबसे अच्छा है? नहीं, बच्चों में से किसका गीत सबसे अच्छा लगा उसका, उसको बांधे लियो का किसका गीत सबसे अच्छा लगा? एक दो से आगे है ऐसा वाक्य पूरे हिंदी साहित्य में या किसी भी संसार के किसी भी साहित्य में नहीं है। कैसे है, सेवा कैसे कर रहे हैं? एक दो से आगे है। कौन आगे है? हर एक दो से आगे है, ऐसा वाक्य कहीं पर भी नहीं है। एक से बढ़कर एक होता है, एक दो से आगे, एक से बढ़कर एक अलग, एक दो से आगे, हर एक दो से आगे है। तो एक दो से आगे इतने प्रिय है, ऐसे प्रिय गीत पहुंच रहे हैं, रूह रिहान पहुंच रही है बाबा तक। और एक चीज पहुंच रही है, कौन सी? कौन सी माला? मोतियों की माला, मोती जिसकी माला बनी और माला जाकर कहां पड़ी? उसके गले में पड़ी। हर मुरली में बाप बच्चों का श्रृंगार करते हैं, बाप बच्चों का श्रृंगार करते हैं ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। इस मुरली में बच्चे बाप का श्रृंगार कर रहे, बाप की सजावट कर रहे हैं। और उसका भी, उसने कहा ना कि अभी सजावट होती है, उसका भी भाग्य है। किसका भाग्य? विधाता का। कौन सा भाग्य है? ऐसी सजावट और कभी नहीं होती, ऐसी सजावट उसकी कभी नहीं होती। क्यों? भक्त भी तो बहुत आंसू बहाते हैं उसके लिए, फिर वो सजावट नहीं है, क्या कहेंगे? अच्छा, ये जमीन पे गिर जाते हैं, ये सूक्ष्मतन पहुंचते हैं। आंसू के तो शब्द मुरली में प्रयोग नहीं किया है बाबा ने, आज की मोती प्रयोग किया है। उधर विरह है, उधर पा लिया। तो मोती जिनकी माला बनती है और माला उसके गले में, एक माला नहीं, कई सारी माला है, बहुत सारी माला है। हमारी माला भी है क्या उसके गले में? ये प्रश्न है। हम खुद ही माला बन गए। मेरी माला है क्या? परमात्मा प्रेम में आंसू आ जाए। किस किस को आते हैं? बहुत है। भाइयों को कम आते हैं थोड़े। प्रेम के आंसू, परमात्मा स्नेह के आंसू, तो ऐसे जो आंसू है भगवान उसे अपने गले की माला बना लेता है। उससे भक्ति में दिखाया है श्री कृष्ण का कि साधु संत ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या की और कहा था कि तुम जब संसार में आओगे तो हमारे साथ रहना। तो दिखाया है वो सारे साधु संत जैसे गाय बन गए, कहीं गोपियां बन गई। भक्ति में तो ये सब चलता है ना, 84 लाख जन्मों में तो सब आ जाता है। तो दिखाया है कि कृष्ण सारे दिन भर किनके साथ रहता है ज्यादा समय? अपनी माँ, उनके साथ थोड़ी रहता है, गैयों के साथ रहता है वो ज्यादा समय, पूरा दिन उधर। और जब आता है उधर से तो उसके शरीर पर पूरे उनके पग की धूली, उनके पग की धूली उसके शरीर पर वो लेके चलता है। दिखाया है प्रेम का अतिरेक, भक्तों के लिए भगवान क्या क्या करता है। कृष्ण का भी दिखाया है आगे कि उस यज्ञ में सभी जो साधु संत आते हैं उनके पद प्रक्षालन, पांव को धोने का काम कौन करता है? कृष्ण करता है। तो भक्तों से प्रेम, भक्त वत्सल कहा है उसे, अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देता है। कौन सा? उदाहरण है एक महाभारत में, शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा करता है परंतु फिर भी भीष्म के सामने वो पहिया उठा लेता है। अलग 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 भक्ति मार्ग में बिखरे हुए प्रसंग है कि कैसे भगवान भक्त के लिए सब कुछ करने को राजी है। योगक्षेमम वहम्यहम, सब कुछ मैं वहन करूंगा तुम्हारा भार। तो यहां पर भगवान प्रेम के जो मोती है उसकी माला अपने गले में डालकर घूम रहा है और ये कल्प में केवल अब होता है। तो ये मुरली का दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, ताजपोशी का दिन। ताजपोशी का दिन, इस मुरली में इस दिन के लिए कई सारे नाम हैं, चार पांच नाम आए हैं। एक तो विशेष दिवस, दूसरा स्मृति दिवस, तीसरा ताजपोशी का दिन। इसके लिए क्या कहा बाबा ने, ताजपोशी अर्थात राज्याभिषेक, कोरोनेशन। क्या किया बाबा ने, मुरब्बी बच्चों को जिम्मेवारियों का ताज, साकार जिम्मेवारियां, हाथ में हाथ और नयनों में दृष्टि और दे दिया। मुरब्बी बच्चों को दे दिया, एक जगह कहा सिकिला दे बच्चे ऊपर। आईज से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, दृष्टिपात, शक्तिपात, आंखों से आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति का ट्रांसफर हो सकती है, परंतु उसके लिए एनर्जी लेवल बहुत ऊंची चाहिए। शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति बताई है। तो अलग अलग चक्र दिखाए हैं। वो चक्र क्या है, वास्तव में शरीर में ऐसे कोई चक्र नहीं है, सब आध्यात्मिक बातें। इड़ा पिंगड़ा दो ना ये दिखाते हैं, पीछे सुक्षुम्ना नाड़ी जिससे शक्ति ऊपर जाती है सहस्त्रार में, और फिर कुंडलिनी का जागरण। ये सारी बातें शास्त्रों में अलग अलग लिखी हुई है। वास्तव में सभी पवित्रता की स्टेजेस है, एक्सट्रीम प्यूरिटी, अतिशय पवित्रता जहां हो वहां पर ये सारे चक्र जो कहो सब खुल ले जाते हैं। और फिर व्यक्ति जो बोलता है वो पांडित्य नहीं होता, प्रज्ञा होती है। एक है प्रज्ञा, एक है पांडित्य, एक है ज्ञान, एक है प्रज्ञा। प्रज्ञा बहुत ऊंचा शब्द है, वो कहीं से पढ़ा हुआ, कहीं से सुना हुआ, कहीं से लिया हुआ या फिर वो नहीं है, टचिंग्स हुई है, वो प्रज्ञा है। तो दृष्टिपात, तो बाबा ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, शक्तियां ट्रांसफर कर दी। शब्दों का काम नहीं, मौन में ये कार्य होता है, बोलने का कोई कारण नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आंखों से ही बहुत कुछ हो सकता है, परंतु वो दृष्टि इतनी पवित्र हो जाए, वो दृष्टि आत्मिक हो जाए और उस आत्मिक दृष्टि का इतना अभ्यास हो जाए कि देह ना दिखे, फिर इस देह से डरना भी नहीं और इस देह को देखकर भागना भी नहीं है। सन्यासियों ने भागने का मार्ग, गृहस्थियों ने भोगने का मार्ग, दो मार्ग चुने। वो देह जो है वो है, उसकी अस्तित्व को हम समझते हैं केवल उसमें छिपी हुई जो आत्मा है उसको देखने का अभ्यास से ऐसी पवित्रता की स्टेज आ सकती है जो कि ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में तपस्या से प्राप्त की और फिर दादी को सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। यहां बाबा ने ये जो दिन था 18 जनवरी 18 का भी बहुत महत्व है। गीता के 18 अध्याय, महाभारत युद्ध 18 दिन, महाभारत की सेना 18, 11 इधर 7 उधर, अलग अलग कई कई देशों में 18 शब्द गुड फॉर्च्यून, गुड लक का प्रतीक है, किसी देश में लाइफ का प्रतीक है, अलग अलग देशों में उसका अलग अलग महत्व है। तो बाबा ने भी 18 जनवरी का दिन चुना, और संसार में जो भी महान आत्माएं ऐसी हुई है, कई सारी आत्माओं को ये पता था कि हम किस दिन जाने वाले हैं, किस समय जाने वाले हैं। हमें ये भी लगता है कि शायद जगदीश भाई ने भी लिखा है या बताया है कहीं कि बाबा को जैसे पूर्वाभास तो हो चुका था कि जाना है, पता था मैं जाने वाला हूं। बहुत सारी आत्माओं को अध्यात्म के इस मार्ग में ये पता चल जाता है कि हम जाने वाले। यहां तक कि बहुत ऊंचे पुरुषार्थी ऐसे भी नहीं, हमें याद है हॉस्पिटल में एक बार कुछ सालों पहले एक माता आई थी मॉरिशस की, तो वो संकल्प ही करके आई थी मैं मधुबन में जा रही हूं, अपने बेटे को कहा था, यह हमें बाद में पता चला जब उसने शरीर छोड़ा उसके बाद, जब उसका बेटा है तो उसने कहा था कि मम्मी जब जा रही थी तो कहा था कि मैं जा रही हूं, वापस नहीं आऊंगी, मधुबन में जा रही हूं। मधुबन में आई, आशीष भाई को याद होगा 5 साल पहले एक माता को लेकर आ गए थे सुबह सुबह, यहां पर सुबह या रात में कुछ हो गया था तो फिर लेके आए, एक या दो दिन तक थे और फिर देह का त्याग किया, कारण पता ही नहीं चला क्या हुआ, एकदम ही बेहोशी लेके आए थे, पर उसने संकल्प करके गई थी। वैसे ही स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी दिखाते हैं कि मृत्यु से कुछ समय पहले पंचांग खोल के बैठे थे, देख रहे थे कौन सी तारीख को जाऊं, काम पूरा हो गया है, अभी और काम करने की आवश्यकता नहीं, जो करना था कर दिया, 38 साल की उम्र में जो करना था कर चुके हैं, अब जाने का समय है। विनोबा भावे, ऐसे कई सारी आत्माएं हैं जिनको पहले ही पता था शरीर छोड़ूंगा। तो बहुत सारी आत्माएं हैं, जो दो ऐसे समय हैं जीवन के जब हम आत्माभिमानी होते हैं। कौन से दो ऐसे समय हैं जीवन के जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं? एक तो बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है वो सोल कॉन्शियस होता है, इसके लिए उसमें इतनी प्यूरिटी और इतना आकर्षण होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्यूरिटी होती है बच्चे में, भले उसके पूर्व जन्म के संस्कार वो पर दबे हुए होते हैं, उस समय उसे पता रहता है मैं आत्मा हूं, धीरे धीरे देहभान बढ़ते जाता है और भूल जाता है फिर, परंतु हर छोटा बच्चा इज अ सोल कॉन्शियस, बचपन जो है वो सोल कॉन्शियस, एकदम छोटा अभी अभी जन्म लिया है जिसने, इज सोल कॉन्शियस। दूसरी अवस्था है मृत्यु के समय की, परंतु हाँ वो अकाले मृत्यु ना हो, ना ही एक्सीडेंट वाली मृत्यु हो, अचानक वाली मृत्यु नहीं, जिसमें व्यक्ति को पता है, जो नैसर्गिक मृत्यु है, जैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग है और वो अभी खाट पर है तो बता देता है कि अभी मेरे जाने का समय है, सब लोग आ गए, सब सुखी है, खुशी है, तो बहुत निश्चिंत होकर जाते हैं, बहुत निश्चिंत होकर शरीर छोड़ते हैं, और उनको पता रहता है अभी मैं जाने वाली हूं। वो अचानक सहज ही आत्माभिमानी हो जाते, तो ये जो इनकम्बेंट डेथ की सिचुएशन जो है, मृत्यु एक्सीडेंट वाली नहीं, वो छोड़ के अकाले वाली नहीं, ये वाली नैसर्गिक, उसमें बुढ़ापे वाली, उसमें व्यक्ति सोल कॉन्शियस हो जाता है स्वतः ही, अपने आप सारे बाकी चीजों से जैसे ममत्व हट जाता है, अपने देह से भी ममत्व हट जाता है, अगर उनको कहे भी कि वापस चाहिए क्या ये देह, तो शायद मना कर देंगे, नहीं चाहिए, काम पूरा हुआ, जो करना था कर लिया, सब देख लिया, सब बच्चे, हमारे पास कई सारे ऐसे मरीज है कि जो कहते बस अभी जाने की देरी है, सारे कार्य हो गए जीवन के, सबकी शादियां कर दी, पोतों का मुंह देख लिया, सब सब देख लिया, अभी कुछ नहीं बचा है, सारा पूरा हो गया जैसे जीवन का, बस जाने की तैयारी, कभी भी आ जाए मृत्यु। और इच्छा मृत्यु तो नहीं कहेंगे इसे, परंतु उनको पता चल जाता है। तो ये जो दो अवस्थाएं हैं, शुरुआत और अंत, दोनों ही सोल कॉन्शियस स्टेजेस है। इसके लिए उस स्टेज में व्यक्ति बिल्कुल इच्छा खत्म हो जाती है खाने की, अभी और शरीर को चलाने की, संपूर्ण जैसे आत्मा सोल कॉन्शियस अपने आप में स्थित हो गई है। और हाँ, दूसरा एक बात है कि जिसको जाना नहीं है, अगर संकल्प कर ले वो खुद ही, तो शायद न भी जाए। हमारे पास एक दूसरी मरीज थी, वो इतनी सीरियस हो गई थी, इतनी सीरियस हो गई थी कि शी वेंटिलेटर और बीपी कम, बस अब जाने ही, मतलब चली, अब गई तब गई। परंतु उसके रिलेटिव से हमने जब बात किया तो वो कह रहे थे कि वो नहीं जाएगी, देखना। उसने कहा था जब तक उसकी जो पोती है उसकी शादी देखती नहीं तब तक नहीं जाएगी वो। हमने कहा ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, अभी जो कंडीशन है, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, न्यूरोलॉजिकल डाउन है और बीपी नहीं है, पल्स कम है, फीबल है, और ये वेंटिलेटर पे 7 दिन हो गए, अभी बहुत चांसेस कम है। उसके बेटे ने कहा था वो रहेगी, देख लेना आप। तो हमने देखा कि धीरे धीरे उसके पैरामीटर इम्प्रूव होते गए, फिर धीरे धीरे वेंटिलेटर भी हट गया, फिर कॉन्शियस हो गई, फिर वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया, और फिर बेटी की शादी कराई, शादी विधि हो गई और घर पे ही शरीर छोड़ दिया, वापस नहीं आई फिर इधर। पर संकल्प किया था उसने, संकल्प से मृत्यु को भी रोका जा सकता है संजय भाई, ठीक है, या ढकला जा सकता है, रोका तो नहीं, पोस्टपोन। तो यहाँ बाबा ने शक्तियां ट्रांसफर कर दी नैनों की दृष्टि से, हाथों में हाथ और अर्पण कर दिया, ताज पहना दिया। तो ताजपोशी का दिन बच्चों, ब्रह्मा बाप का बच्चों को बाप समान भव का वरदान देने का दिवस, ये तीसरा नाम है। आगे फिर बाबा ने क्या कहा, बोल के बारे में कहा, अंतिम बोल, अंतिम भाषा, अंतिम संकल्प, अंतिम इशारे के बोल। कौन से बोल थे वो? किसी और मुरली में ये बोल नहीं है, सब सबको एक ही बोल पता है, साकारी आकारी निराकारी, निराकारी निरंकारी निर्विकारी। परंतु ये संकल्प के बोल है, बोले नहीं है, संकल्प के बोल। कौन से है वो? विधि से वृद्धि को पाते हो, बाप सहयोगी है, इससे विधि से वृद्धि को, एक जगह कहा है तीव्र विधि जितनी होगी उतनी वृद्धि भी तीव्र होगी। एक वृक्ष को बाबा ने इमर्ज किया यहाँ पर, कैसा वृक्ष है ये, कौन सा वृक्ष है ये, जो वरदान है ये बीज है, इस बीज से एक नया वृक्ष खड़ा हुआ है, एक ही वृक्ष में अलग अलग वैरायटी के फल लगे हुए हैं, वो फल कौन है, हम, वो फल कौन है, हम, कैसे है, खट्टे मीठे सब अलग अलग वैरायटी है, एक जैसा कोई भी फल नहीं है, हर एक की टेस्ट अपनी अपनी है, हर तरह के, सैम वैन, क्या नाम, अकिन, सैम वैन अकिन नाम का एक आर्टिस्ट है अमेरिका में, अब भी है, उसने एक झाड़ बनाया है ग्राफ्टिंग मेथड से, एक झाड़ में कितने, 40 फल अलग अलग वैरायटी के, एक ही झाड़ में 40 फल अलग अलग वैरायटी के, वो आप देखो मिल जाएगा चित्र, बहुत सुंदर चित्र है, एक ही झाड़ अलग अलग ग्राफ्टिंग से बनाए है, उसकी कीमत कितनी है झाड़ की, बहुत बहुत महंगा है वो, जो कहिए 16 या उससे भी ज्यादा बना लिए उसने, ऐसे 16 थे 2000 लेटेस्ट 2014 तक, हाँ, तो टेड टॉक में भी उसने कहा था। तो सैम वैन किन नाम के एक व्यक्ति ने, आर्टिस्ट ने, एसोसिएट प्रोफेसर है उधर यूएस में, तो उसने ऐसा झाड़ बनाया है ग्राफ्टिंग से। बाबा क्या कह रहे हैं उसके लिए, वो साइंस वाले भी बनाते हैं, एक दो बनाते हैं, बाबा ने एक दो बताए, दो चार, तो तुम वो भी खाते हो। परंतु ऐसा ये जो झाड़ है इसकी क्या विशेषता है? ये सतयुग में भी नहीं होगा। ये कैसा झाड़ है? सुंदर। ये कैसा झाड़ है? विशाल। ये कैसा झाड़ है? सहज योग की पालना से पला झाड़। कैसा झाड़ है? विचित्र। कैसा झाड़ है? दिल खुश करने वाला। ऐसा ये झाड़ है। कौन सा झाड़? संकल्प। कौन सा संकल्प? सहयोग से की विधि से वृद्धि को पाना। ये बाप का जो संकल्प था उसका झाड़ बना, उसके फल हम है। ये ऐसा विचित्र था झाड़ है। ये बात यहाँ बाबा ने की। चौथी, पांचवी बात, लास्ट पैराग्राफ। बाबा ने क्या कर दिया? विल कर दिया। पहले तो लौकिक प्रॉपर्टी विल कर दी थी, जिससे 14 साल तक यज्ञ चला। 14 साल तक कराची में जो तपस्या हुई, किस पैसों से थी? जो लौकिक प्रॉपर्टी थी उस पैसों से। बाबा ने फिर बाद में कभी पैसे को स्पर्श नहीं किया, एक बार छोड़ दिया उसके बाद। तो वो थी लौकिक। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी की? विल की। अलौकिक प्रॉपर्टी, तो विल करने का दिवस, ये एक दूसरा नाम दिया यहाँ पर। कंबाइंड स्नेह शक्ति का दिवस, अति स्नेह और अति शक्ति। स्थूल प्रॉपर्टी की कोई डेट नहीं है। वो तो हाँ, वो दूसरा है, वो दिवाली वाला दूसरा है। ये डेट तो नहीं है, किसी को नहीं पता। हाँ, तो विल कर दिया। तो बाप समान वरदानी दिवस, बाप समान बनने का वरदानी दिवस, ये एक दूसरा नाम दिया यहाँ पर इस दिवस के लिए। तो विशेष तो मुरली जो 18 जनवरी वाली है, मेन मुरली, उसमें मुख्य रूप से बाबा ने समान दिया है जहान के नूर होने का। प्रेम की बातें कही है कि हमारे प्रेम के मोती उसके गले की माला बनते हैं। तो ऐसा हमारा प्रेम चाहिए। साउथ में एक भगत हुआ है बहुत अच्छा, रामदास, रामदास करके, उसको दिखाया है। उसके उसका वो किला भी बना हुआ है उधर, किले में उसकी वो कुटिया, कर्नाटक में कहीं। भद्राचल रामदास, सुना होगा? नहीं सुना? उसको दिखाया है कि वो कहीं शाह के पास, राजा के पास दरबारी था, उनके कोर्ट में, और उसने एक मंदिर बनाया, उसमें बहुत खर्चा कर लिया। तो राजा ने उसको 12 साल की सजा दे दी, क्योंकि जितना पैसा उसको दिया था, उसके पास था, उससे कहीं अधिक खर्च कर दिया था राम मंदिर बनाने के लिए। राम भक्त था वो, भद्राचल रामदास। तो 12 साल के बाद दिखाया है कि श्री राम और लक्ष्मण आते हैं उस दरबार में, और वो सारे पैसे देकर जाते हैं और कहते हैं कि उसने हमको भेजा है। और जब उसको पता चलता है कि ऐसे दो भाई आए थे और तुमको छुड़ा के गए हो, कहते ऐसे कोई थे ही नहीं, फिर उसको पता चलता है ये तो स्वयं राम होंगे जो मुझे छुड़ाने आए। ऐसे अलग अलग प्रसंग दिखाते हैं भक्ति के, कितने सत्य है पता नहीं, परंतु भक्ति में इनका गायन बहुत है कि भगवान स्वयं आए और भक्तों को बचाया, उनकी पीड़ा से उनको दूर किया। वैसे शिवाजी महाराज के जीवन में भी दिखाते हैं कि एक बार सत्संग कर रहे थे, संत तुकाराम का सत्संग वहां चालू था और सारी मुगल सैनिकों ने घेर लिया, परंतु जैसे अंदर घुसे भ्रमित हो गए, सब जगह शिवाजी शिवाजी दिखने लगे, जितने लोग थे आपस में ही लड़ने लगे, और फिर शिवाजी एक तरफ से भाग गए, चले गए वहां से। तो अलग अलग दिखाया है कि कैसे संतों पर परमात्मा कृपा रहती है। यहाँ तक कि संत संग में भी बहुत बड़ा पुण्य है। उन आत्मा दासानुदास का भी कितना बड़ा भाग्य समझते हैं। तो भक्त अलग अलग, भगवान अलग अलग रूपों में आकर भक्तों की रक्षा करता है, और यहाँ तो वो बंधा हुआ है। प्रश्न एक ही है कि हमारे जो प्रेम के मोती है उसके गले की माला बने। क्या इतने हम योग्य बने हैं, क्या हमारे प्रेम में कहीं खोट तो नहीं है, दोष तो नहीं है, स्वार्थ तो नहीं है, आडंबर तो नहीं है, दिखावा तो नहीं है, सच्चा है। चेकिंग करना। बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। रोज अमृत वेले एक प्रयोग हम कर सकते हैं कि भगवान हम सूक्ष्म वतन में गए और बाबा ने हमें ताज पहनाया। कौन सा ताज? जिम्मेवारी का ताज। हमें जहां अब हम हैं, उस स्थान से भागकर कुछ नहीं करना है, वहीं पर रहते हुए उन्हीं लोगों के बीच उसी स्थान में उसी परिस्थिति में रहते हुए बाबा ये ताज पहना रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज है सर्विस का, अब वहीं से सेवा आरंभ करो। उन्हीं के बीच में उसी प्रतिकूल परिस्थितियों में, एडवर्स सिचुएशंस में, ये वरदान बाबा से लेना है कि बाबा ने ताज पहना दिया है और ये ताज अब भगवान ने पहनाया है, तो सारी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिना कोई कंप्लेंट किए, ये व्यक्ति अच्छे नहीं, स्थान अच्छा नहीं, परिस्थिति ठीक नहीं, उन्हीं के बीच में संपूर्ण बनना। ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं, ये बाजू वाले अच्छे नहीं, हाँ नहीं बाजू वाले ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, कंप्लेंट एक नेचर बन जाता है फिर, और कंप्लेनिंग माइंड कभी तृप्त नहीं हो सकता है, परमात्मा कृपा भी वह नहीं आती है। टचिंग्स तो बहुत दूर की बात है, बाबा ने कहा ऐसी समय पर टचिंग आने के लिए माइंड इतना स्वच्छ, क्लीन और क्लियर होना चाहिए, जो समय पर टचिंग आई अब क्या करना है, क्योंकि परिस्थितियां इतनी भिन्न भिन्न है, कल क्या होने वाला है पता नहीं, आज रात में क्या होने वाला है पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम रहे न रहे, आज शरीर है कल सुबह तक नहीं रहेगा, किसी का कोई भरोसा ही नहीं है यहां देह का, तो ताजपोशी। और फिर ये जो वृक्ष बाबा ने कहा है, इस वृक्ष के हम फल है, तो ब्रह्मा का जो संकल्प था उसका वृक्ष निर्माण हुआ और उसके हम फल है। हमारा भी अगर हम जहान के नूर है तो हमारे भी संकल्प का जो वृक्ष होगा उससे कई सारी आत्माओं रूपी फल निकलेंगे, तो जैसा बीज वैसा फल, हमारे संकल्प भी बीज है, जैसे ब्रह्मा का बीज था ना संकल्प, उसी तरह नीचे दादियों से बाबा ने बहुत अच्छी बातें कही है, सब ब्रह्मा से कंपेयर किया, उसको वरदान मिला था तत्त्वम का, तुमको ब्रह्मा से वरदान मिला है ब्रह्मा समान बनने का, तत्त्वम का, उसने अपने कर्म से बाप को प्रत्यक्ष किया, तुम अपने कर्म से ब्रह्मा को प्रत्यक्ष करो, ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा बाप, साक्षात्कार की बातें कही, शक्ति के साथ शिव समाया हुआ हो, शक्ति स्वरूप की एडिशन करो, पहले साकार में साक्षात्कार हुए थे पर अंत में ये साक्षात्कार होंगे, कंबाइंड रूप के साक्षात्कार। और फिर और एक बात कही यहां ब्रह्मा के अव्यक्त होने की, क्यों अव्यक्त हुए बाबा, शरीर के बंधन से मुक्त होने क्यों हुए, तीव्र गति की सेवा करने के लिए, उदाहरण दिया फिर से एक अच्छा, संसार का पत्र कब तक लिखते रहेंगे, कब तक लेटर से सेवा करते रहेंगे, जैसे सूर्य ज्यादा जगह पर अगर प्रकाश फैलाना है तो ऊंचा चाहिए रोशनी, और जैसे संसार को प्रकाशित करने के लिए सूरज ऊंचा होता है, ऊंचा भी होता है और डिटैच भी होता है, लोग सकाश देते हैं अपने मित्र संबंधियों को पर उनकी सकाश पहुंचती नहीं, कभी पहुंचेगी भी नहीं, क्योंकि इतनी आसक्ति है उस व्यक्ति से कैसे पहुंचेगी, माँ अपने बेटे के लिए योग करती है, वो बीमार है उसके लिए योग कभी नहीं पहुंचेगी, क्यों, सकाश के लिए एक चीज चाहिए रहती है, कौन सी संजय भाई, वैराग, सकाश का क्राइटेरिया है वैराग, जिसको सकाश देनी है उससे डिटैच चाहिए, नहीं तो कितना भी योग करो वो सकाश तो उस मोह में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, वो सोख लेता है अपने अंदर वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह, इसके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया है सकाश, सेंडर जो है सकाश देने वाला जो है उसमें बेहद का वैराग चाहिए। तो जैसे सूरज ऊपर होता है, वो डिटैच है धरती से, ऊपर से फिर धरती को, और जितने ज्यादा लोगों को सकाश देनी है उतना उसे ऊंचा उठना होगा। हमें जितने ज्यादा लोगों की सेवा करनी है, एक तो उन सबसे ऊपर उठना होगा और दूसरा उनसे डिटैच होना होगा। बिना बेहद के वैराग के सकाश की सेवा हो नहीं सकती, अव्यक्त महावाक्य है। इसके लिए सकाश सेवा इतनी आसान नहीं है कि बैठो और चलो दो। संकल्प भी कैसा हो, पर हो शक्तिशाली संकल्प हो, सबको दे दो, परंतु सबको देने के लिए इतना ऊंचा भी होना पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश सब जगह जाता है, तो हमें भी वैसा सूर्य बनना है और विश्व की हर आत्मा को हमारी किरणें पहुंचे, हमारे संकल्प पहुंचे। एक जो हमें सेवा करनी है वो ये, हर आत्मा में पवित्र बनने की प्रेरणा जागृत हो। कौन सी सेवा में करनी है? हर आत्मा में, चाहे हम कहीं चले जाए किसी स्थान पर, वहां के लोगों में, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में, किसी कोई भी स्थान पर हम जाए या यहां कोई आ जाए, रिजल्ट एक ही होना चाहिए कि उनके मन में प्रेरणा, अंत प्रेरणा जागृत हो कि हमें पवित्र बनना है। ब्रह्मा बाबा के पास जो भी आते थे उनमें ऐसी कशिश थी कि बिना बोले ही सामने वालों में वो प्रेरणा जागृत होती थी कि हमें पवित्र बनना है। तो आत्मा आंतरिक किस तल पर कार्य करे अपने आप में, प्यूरिटी की कौन सी स्टेज अंतर हो, तभी दूसरी आत्माओं में भी पवित्र बनने की प्रेरणा जागृत हो। ये सेवा करनी है, प्रेरित करना है आत्माओं को, अंत प्रेरणा देनी है, वो होगा हमारी ऊंची स्थिति। तो ये बात बाबा ने यहां कही। और भी कोई बात कही है जो बच गई है तो बताओ। सुशील भाई, कौन सी बात बची है? मेरा बाबा, हाँ, मोतियों में क्या लिखा है वो नहीं बताया। एक एक मोती में वाह बाबा और मेरा बाबा। और भी कोई पॉइंट है? 3 मिनट अभी और है। कमलेश भाई, क्या क्या? शिव शक्ति बोल दिया ना, समाया हुआ है उसमें सूरत। हाँ, आपकी सूरत से बाप की मूरत नजर आए, ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा बाप समान, ऐसे नजर आओ। तो अभी हमारे पास 3 दिन है, 16, 17, 18। ये 3 दिन एक दूसरा काम करना है। ज्ञान मुरलिया तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु बाबा की जो जीवन कहानी है उसका अध्ययन करना है। अगले 3 दिन बाबा वेनसडे को आएंगे शाम को, तब तक इस 3 दिन ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी का अध्ययन करना है। उसमें दादियों के अनुभव आ जाएंगे। भाग्य विधाता किताब है और दूसरी कौन सी है प्रभाकर भाई? प्रभु प्रेम के परवाने विदेशियों की है, आदि रतन। हाँ, मेन किताब जो है आदि रतन। आदि रतन में सभी दादियों के अनुभव है, सब दादियों के, एक एक दादी का ऐसे ऐसे अनुभव है उसमें, इतना संघर्ष, इतना सितम, और उसमें से कैसे बाबा ने उनको चुना, कैसे मदद की, एक एक दादी का, सभी दादियों का है और जगदीश भाई का है। उस आदि रतन और जीवन को पलटाने वाली जो किताब है उसका अगले 3 दिन, हो सके तो आदि रतन किताब का ही अध्ययन करो, ताकि 3 दिन में किताब पूरी करनी है, ये लक्ष्य तो रख सकते हैं, वैसे तो होती नहीं है। तो 3 दिन का टारगेट अगर दे दिया जाए कि 3 दिन में ये किताब पूरी करनी है, जिनके पास नहीं है वो कल सुबह यहां से ले ले, लाइब्रेरी से मिल जाएगी, कमलेश भाई तो रहमदिल है, दिलदार है, परंतु अपनी किताब होनी चाहिए। इसके लिए लिटरेचर से ले ले और अगले 3 दिन केवल ये जो किताब है आदि रतन, इसका अध्ययन करना है, कंप्लीट अध्ययन पूरा, एक एक चीज, एक एक दादी का अनुभव। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।